दरवाजे की हर चरमराहट पर उसकी आंखें उसी ओर उठ जाती थीं। हाथों में दूध का गिलास था, कांपता हुआ, जैसे दिल की बेचैनी उसकी हथेलियों तक उतर आई हो। अचानक दरवाजा खुला। वो आया, उसके सपनों का नहीं, उसके नाम का पति। भारी भारी कदमों से कमरे में दाखिल हुआ, जैसे इस रिश्ते का बोझ पहले ही उठा चुका हो। बिना एक शब्द कहे उसने लड़की के हाथ से दूध का गिलास लिया और खुद पीने लगा। एक पल के लिए लड़की के चेहरे पर एक सुकून सा उभरा, शायद आज कुछ बदलेगा। लेकिन नहीं, अगले ही पल उसने लड़की की कलाई पकड़ी और जबरदस्ती वही गिलास उसके होठों से लगा दिया। पी इसे। उसकी आवाज में ना तो प्यार था ना अपनापन, बस हुक्म और नफरत। लड़की घबरा गई, उसकी आंखें डबडबा गईं। उसने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूध का स्वाद अजीब था, कुछ ऐसा जैसे कड़वाहट अब सीधे उसके सीने में उतर रही हो। लड़की लड़खड़ाकर पलंग पर गिर गई, उसे लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा हो। तभी वो झुका, उसके कानों में जहर सी फुसफुसाहट की तरह बोला, तुझे क्या लगा कि मैंने तुझसे प्यार करके शादी की है? ये शादी मेरी मजबूरी थी, एक सौदा। और एक बात याद रखना, तुझे मैं कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। तू सिर्फ मेरी नफरत की जरूरत है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा। लड़की की आंखें उसके चेहरे को पढ़ने लगीं। शायद कोई झूठ हो, कोई नरमी छिपी हो, लेकिन वहां सिर्फ सर्द पत्थर था। अध्याय इज्जत का तमाशा। सुबह के 7 बज रहे थे। राजवंशी महल में रौनक थी। हर कोना सजा हुआ, जैसे वक्त भी किसी खास पल का इंतजार कर रहा हो। गुलाब की पंखुड़ियां फर्श पर बिछी थीं, झूमर की रोशनी उस पर पड़कर सोनी जैसी चमक फैला रही थी। आज दादाजी और दादी जी की शादी की 50वीं सालगिरह थी। पूरा खानदान हंसता मुस्कुराता और एक दूसरे को गले लगाकर तस्वीरें खिंचवा रहा था। हॉल में एक दीवार पर बड़ा सा LED TV लगा था। ज्यादातर लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं था, क्योंकि सब पार्टी में मशगूल थे। मगर तभी अचानक ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, तेज आवाज में टीवी की ओर सबका ध्यान खिंच गया। देश के जाने माने उद्योगपति और राजनेता वीर प्रताप राजवंशी के पोते अखिलेश राजवंशी को एक लड़की के साथ होटल रॉयल गैलेक्सी के कमरे नंबर 709 में रात में संदिग्ध हालत में देखा गया है। दोनों के कुछ बेहद निजी वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जिससे ये साफ है कि दोनों हमबिस्तर थे। एक सेकेंड के लिए मानो पूरे हॉल की हवा थम गई। पार्टी की रौनक एक पल में बुझ गई। दादी का हाथ चाय की प्याली पर कांपने लगा। दादाजी की आंखें एकटक टीवी पर ठहर गईं। उनके माथे की नसें तन गई थीं। क्या बकवास है ये, बड़े भाई अर्जुन का गुस्से से गला भर आया। टीवी बंद करो ये सब, माँ ने चिल्लाकर कहा, पर तब तक तो पूरा न्यूज फ्लैश हो चुका था। वीडियो में अखिलेश के गले में वही काला लॉकेट था जो दादी ने उसे पिछले जन्मदिन पर दिया था, और उसके पास एक लड़की थी। आंखें नींद से भारी, बाल बिखरे हुए और बदन पर सिर्फ एक चादर। हे भगवान, ये अखिल ने क्या कर दिया, बुआ मुंह पर हाथ रखकर फुसफुसाई। अखिल होटल में, वो भी इस हाल में, किसी ने पकड़ लिया क्या, छोटा भाई राघव ने हैरानी में पूछा। दादाजी धीरे धीरे सोफे से उठे। उनकी चाल भले ही अब धीमी हो गई हो, मगर आवाज अब भी वही पुरानी थी, सीधी रीढ़, सीधा लहजा। रामलाल, उन्होंने नौकर को पुकारा। जी मालिक। अखिल कहाँ है? वो कल से घर पर नहीं है, शायद शहर से बाहर गए थे पर लौटे नहीं अभी तक। गाड़ी निकलवाओ और पता करो कौन ये न्यूज फैला रहा है। अपने आदमी भेजो होटल में, CCTV रिकॉर्ड सब चाहिए मुझे, समझे? जी मालिक। पापा यशवर्धन राजवंशी, जो अभी तक चुप थे, अब धीरे से बोले, बाबूजी, ये लड़का दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा है, बहुत सिर चढ़ गया है। अब क्या कहें भैया, छोटे चाचा ने भी गहरी सांस ली। नाम तो पूरे खानदान का खराब हुआ है, और ऐसे मौके पर जब घर में इतने लोग आए हैं। माँ दीवार की तरफ पीठ टिका कर खड़ी हो गई थी, उनकी आंखें लाल थीं। मैंने बचपन से उसे समझाया था, कभी ऊंची आवाज नहीं की, कभी उसकी जरूरतें अधूरी नहीं रहने दी, फिर भी। अब क्या फायदा सब कहने का, यशवर्धन ने झुंझलाकर कहा, अब तो न्यूज चैनल वाले हमारी हवेली के बाहर जमा हो जाएंगे। छोटी भाभी ने धीरे से पूछा, कहीं वो लड़की उसे फंसा तो नहीं रही? हो भी सकता है, राघव बोला, आजकल की लड़कियां भी तो, कैमरे का टाइम देखो, वो सब प्लान किया हुआ लग रहा है। चुप हो जा, दादाजी की आवाज गूंजी, अब भी किसी और को दोष देने बैठे हो, पहले अपने घर के लड़के को सीधा करो। टीवी पर अब रिपोर्टर बाहर खड़े होकर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। हम इस वक्त होटल रॉयल गैलेक्सी के बाहर हैं, जहां अखिलेश राजवंशी को एक युवती के साथ देखा गया। सूत्रों के अनुसार दोनों कई घंटे कमरे में रहे और वहां से निकलते वक्त लड़की की हालत नाजुक लग रही थी। क्या मतलब है इनका नाजुक हालत, दादी फटी फटी आंखों से स्क्रीन देखती रही। बस अब और नहीं,
पापा उठ खड़े हुए। मैं पीआर टीम को कॉल करता हूँ, हमें इस आग को फैलने से पहले बुझाना होगा। इज्जत का तमाशा बना दिया। दादाजी की आवाज भारी पड़ने लगी थी। हमारे खानदान ने इतने सालों तक मेहनत से नाम कमाया और ये लड़का एक झटके में सब मिट्टी में मिला रहा है। इतने में मोबाइल की घंटियां बजने लगी। रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स, पुराने दोस्त, हर कोई जवाब मांग रहा था। ये क्या देख रहे हैं हम टीवी पर? क्या सच है अखिल के बारे में? तुम्हारे घर में सब ठीक है ना? पापा ने एक के बाद एक कॉल काटे, फिर पीआर हेड को मैसेज किया, कंट्रोल द मीडिया नाउ। रात 9 बजे हवेली में जैसे सन्नाटा पसर गया था। कोई खाना नहीं खा रहा था। मेज पर पकवान वैसे ही रखे थे, ठंडे बेजान। तभी दरवाजा खुला। अखिलेश, काले कपड़े, बिखरे बाल, आंखें थकी हुई और चेहरा सफेद, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके अंदर आते ही सबकी निगाहें उसकी तरफ घूमी। माँ दौड़कर उसके पास आई, अखिल ये क्या कर बैठे तुम? अखिल कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप दादाजी की तरफ देखा। दादाजी की आंखें तेज थीं। बोलो अखिल, क्या सच है? दादाजी, अखिल की आवाज जरा कांपी, नहीं, मैं नहीं जानता। सुबह में मैंने भी उसे पहली बार देखा। तो फिर वो कैमरा, वो फुटेज, वो न्यूज, मैं कुछ नहीं जानता। हो सकता है ये किसी चाल हो। क्यों, किसने? नाम बताओ। मुझे शक है रंजीत सिंह पर। सन्नाटा और गहरा गया। रंजीत सिंह? यशवर्धन चौंके, वो तो तुम्हारा दोस्त था ना? था, अब नहीं। वो मेरी कंपनी के हिस्सेदार में से एक बनना चाहता था। जब मैंने मना किया तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तुमने हमसे छुपाया? पापा चिल्लाए। क्योंकि मैं सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक हो गया ना? अब पूरा देश देख रहा है तुम्हारा हाल। दादी ने बस धीरे से कहा, भगवान करे ये साजिश ही हो, वरना ये हवेली कभी माफ नहीं करेगी तुझे। अखिल ने एक लंबी सांस ली और पहली बार आंखों में गुस्सा छलक आया। महल की दीवारों पर लगी मखमली सजावट अब एक अजीब सी खामोशी उड़ चुकी थी। माहौल में पहले जितनी गर्माहट थी अब उतनी ही घुटन उतर आई थी। दादाजी अब भी उसी जगह खड़े थे, सोफे के पास, जहां से उन्होंने न्यूज चैनल की खबर पहली बार देखी थी। उनकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी थी, जैसे उनमें से जवाब खींच लाना चाहते हों। उधर यशवर्धन राजवंशी, अखिलेश के पिता, तेज कदमों से हॉल के कोने में रखी अपनी स्टडी टेबल की ओर बढ़े। वहीं दीवार के पास अर्जुन, अखिलेश का बड़ा भाई, पहले से खड़ा था, हाथ में फोन थामे, माथे पर शिकन। राघव, यशवर्धन की आवाज तेज और हुक्मी थी, अब तक पीआर टीम ने कोई स्टेटमेंट जारी किया? पापा, मैंने बात की थी, पर वो कह रहे हैं कि मीडिया वाले वीडियो के हवाले से दबाव बना रहे हैं, कोई भी स्पष्टीकरण सुनने को तैयार नहीं है। यशवर्धन ने गहरी सांस ली, फिर राघव के कंधे पर हाथ रखा। अब सिर्फ पीआर से काम नहीं चलेगा, सीधे चैनल के मालिक को फोन लगाओ, कह दो अगर अभी के अभी ये न्यूज नहीं रोकी गई तो हम उनके न्यूज ग्रुप की सारी फंडिंग खींच लेंगे। ठीक है पापा। राघव ने फोन उठाया और नंबर डायल किया। चेहरे पर साफ तनाव झलक रहा था। फोन कुछ ही सेकंड्स में उठ गया।
हेलो मिस्टर जोशी, ये राघव राजवंशी बोल रहा हूँ। जो न्यूज अभी आपके चैनल पर चल रही है उसे अभी के अभी हटाइए। कुछ सेकंड की चुप्पी, दूसरी ओर से हल्की सी सफाई। नहीं मिस्टर जोशी, मैं किसी सफाई में नहीं पड़ना चाहता। आपको हमारी कंपनी का नाम याद है ना, जो इस चैनल की 38% शेयर की फंडिंग करती है? अगर ये ब्रेकिंग न्यूज अब से 5 मिनट बाद भी ऑन एयर रही तो आप अपने चैनल को ऑफिस किराए पे देने लायक भी नहीं बचेंगे, समझे आप? कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी धीमे धीमे हटने लगी। रिपोर्टर हटाया गया, लाइव बंद हुआ और स्टूडियो से अचानक एक नया विषय ऑन एयर हो गया, क्रिकेट कप्तान का बड़ा बयान। यश ने फोन रखा, गहरी सांस ली। हो गया, उसने कहा। यशवर्धन ने बस सिर हिलाया। मीडिया को पैसे से नहीं, टाइमिंग से कंट्रोल किया जाता है, और आज तुमने सही टाइमिंग पकड़ ली यश। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया उन्होंने मुड़कर पूछा, अखिल कहाँ है? अपने कमरे में है पापा, यश ने कहा, लेकिन अजीब चुप बैठा है, ना सफाई दे रहा है ना गुस्सा, बस बैठा है। चलो बात करते हैं उससे, यशवर्धन ने सधे कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा। राजवंशी हवेली, 3री मंजिल, अखिल का कमरा। दरवाजा खुला तो वहां कम रोशनी थी, एक कोना हल्की नीली लाइट से चमक रहा था। एक बड़ी खिड़की के पास अखिल बैठा था, कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाए, आंखें बंद। उसकी कलाई पर अभी वही घड़ी थी जो रणविजय ने उसे MBA पूरा करने पर गिफ्ट की थी। अखिल, यशवर्धन की आवाज थोड़ी सख्त थी। अखिल ने आंखें खोली लेकिन चेहरा बिना भाव के। न्यूज देखी? यश ने सीधा सवाल किया। बस इतना ही बोला अखिल। कुछ कहोगे? यशवर्धन पास आकर बोले, कहने को कुछ है नहीं पापा। मतलब? यशवर्धन की भौहें तनी। तू उस लड़की के साथ होटल में था या नहीं? अखिल उठा और सीधे पापा की आंखों में देखकर बोला, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, ना नाम पता है ना चेहरा पहचाना, और जो वीडियो तुमने देखा वो मुझे यकीन है बनाया गया है। तो तू वहां गया था? यश ने संदेह से पूछा। हाँ मैं होटल में गया था, लेकिन मीटिंग थी किसी क्लाइंट के साथ। 76 नंबर रूम मेरा नहीं था, किसी ने जानबूझकर मेरा नाम वहां से जोड़ दिया, और जो लड़की वीडियो में दिख रही है मैं उसे कभी मिला भी नहीं। यशवर्धन की आंखों में गुस्सा और उलझन का तूफान था। अखिल, इस वक्त सिर्फ सच्चाई काम आएगी,
अगर सच में तू इसमें फंसाया गया है तो हमें कानूनी रास्ता लेना होगा, और अगर झूठ बोल रहा है। पापा, दुनिया जो देख रही है वो सब कुछ भी नहीं है, अखिल ने बात काटते हुए कहा। लेकिन इज्जत का सवाल है अखिल, यशवर्धन का स्वर ऊंचा हुआ। और मेरी भी एक पहचान है अर्जुन भैया, अखिल अब थोड़ा सीधा खड़ा हुआ। मैं भी आपके साथ बिजनेस संभालता हूँ, मैं भी नाम कमाता हूँ, लेकिन जब न्यूज़ चैनल में कोई लड़की के साथ मेरा नाम जोड़कर फुटेज चलाता है तो कोई ये नहीं पूछता कि सच्चाई क्या है, सबको तमाशा देखना है। ये तमाशा तुम्हारे बर्ताव से खड़ा हुआ है, अर्जुन गुस्से से बोला। नहीं भैया, ये किसी और की साजिश है। जिस क्लाइंट से मीटिंग थी उसकी कंपनी का नाम आज मेरे कॉम्पिटिटर से जुड़ा मिला है। यशवर्धन कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इसका मतलब? मतलब ये कि मैं निशाना था। लड़की भी, होटल का कमरा भी, कैमरा भी, सब सेट किया गया था, और अगर हमने सही तरीके से ये प्रूव नहीं किया तो ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी और दादाजी की भी बेइज्जती बनेगी। यश थोड़ी देर चुप रहा। तू चाहता क्या है अभी? सिर्फ दो दिन, मैं सब प्रूव करके दिखाऊंगा, और अगर ना कर सका, यश वैथन ने सीधा पूछा, तो मैं खुद मीडिया के सामने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले किसी को मुझे दोषी ठहराने का हक नहीं है। कमरे में खामोशी पसर गई। यशवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, दो दिन, लेकिन एक बात याद रख अखिल, तू अगर झूठ बोल रहा है ना तो इस खानदान का नाम तू कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अखिल ने सिर आंखों में आंखें डाल कहा, सच क्या है ये तो बाहर आकर ही रहेगा पापा। कमरे से बाहर निकलते हुए यशवर्धन ने अर्जुन की ओर देखा। अगर वो सच कह रहा है तो किसी ने हमारी जड़ें हिलाने की साजिश की है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं।